Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरे नष्टगायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के पवित्र इस दिवस पर आज हम पीपाजी महाराज की कथा सुनेंगे। पीपाजी महाराज का जीवन चरित्र नाबाजी ने बड़ा लंबा लिखा है। और राजा होकर भी एक वैराग्य साधु के गुण उनमें प्रकट हुए थे। राजस्थान के कोटा बूंदी के निकट घाघरोनगढ़ नाम का राज्य था। उसमें पीपाजी महाराज जी के पिता कड़वराव चौहान, जिनको सब लोग प्रेम से संत बप्पा कहते थे और पीपाजी महाराज जी को प्रेम से राव बप्पा कहते थे। पीपाजी महाराज जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1417 चैत्र पूर्णिमा को हुआ। और उनका राज्य अभिषेक 1442 में हुआ। पीपाजी महाराज जी देवी के भक्त थे। अपने राज्य में देवी उपासना करवाते थे और नित्य 40 मन अनाज का देवी को भोग प्रसाद लगाते थे और सबको बांट देते थे। ये इनका नियमित कार्य था। एक दिन उनके राज्य में संत आए। संत आए तो उन्होंने संतों को बोला के कहा कि हमारे यहां भंडारा चल रहा है, देवी जी को रोज 40 स्वर्ण अन्न का भोग लगता है, आप भी आइए साथ में प्रसाद ले लीजिए। संतों ने कहा हमारे साथ हमारे अपने ठाकुर जी हैं, हम उन्हीं को भोग लगाते हैं और भोजन करते हैं, हम वैष्णव हैं इसलिए कृष्ण को भोग लगाकर ही खाते हैं, देवी मां का प्रसाद नहीं खाते। इन्होंने कहा ठीक है हम आपको थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं, आप अपना बना के खा लीजिए, ना विशेष आदर किया ना अपमान किया, थोड़ा बहुत दे दिया बना लो, उत्तम पदार्थ नहीं दिए। संत लोगों ने सोचा ठीक है जो मिला वही ठीक है। राजा के वही बगीचे में बाहर ही संत लोग रात को रुक गए, जो उन्होंने दिया था उसी व्यवस्था के अनुरूप बना दिया, भगवान को भोग लगाया। अब सब संत लोग प्रसाद लेने बैठे तो सभी संतों के मन में क्या भाव आया, ये राजा सेवा बड़ी करता है, रोज के रोज इतने लोगों को भोजन कराता है, भाव इसका अच्छा है, लेकिन कहीं ये कृष्ण भक्त बन जाए ना तो क्या कहना। सभी संतों ने वहां पर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने आज जो अन्न खाया है ना वो राजा का है, तो किसी का कुछ खाते हैं तो उसको कुछ देना भी पड़ता है, तो प्रभु बदले में इसको कुछ दो, कुछ भक्ति दो इसको। सभी संतों ने हृदय में प्रार्थना की प्रभु इसको कुछ भक्ति का दान करो, सोना तो है ये लेकिन अगर भक्ति मिल जाएगी ना तो सोने में सुगंध आ जाएगी, इसका जीवन सफल हो जाएगा। अब सभी संतों ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उनकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते, भगवान ने लीला की। जब पिपाजी महाराज रात्रि को शयन करने के लिए चले गए तो उनके स्वप्न में भयंकर भूत आया और भूत पिपाजी के छाती पे बैठ के उनको मारने जा रहे हैं। पिपाजी सपने में घबरा रहे, पसीने छूट गए उनके, जैसे तैसे भाग रहे, भूत बिल्कुल उनके निकट के निकट चल रहा है और भयंकर डरावनी शक्ल है, पिपाजी महाराज बहुत डर रहे। ये करते 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 बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुल गई, जब नींद खुल जाती है तो सपना फिर सपना नहीं रहता, क्योंकि नींद खुलने के बाद तो वहां पर तो कोई भूत नहीं होता ना, वो तो सब नींद में था। लेकिन नींद खुलने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, जो स्वप्न में भय था ना वो पूरा का पूरा भय जागने के बाद हृदय में था, भूत नहीं था लेकिन भय था हृदय में, घबरा गए थे। उन्होंने देवी मां से प्रार्थना की कि मां मैं तेरी रोज सेवा पूजा करता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पर दया करो। देवी मां प्रकट हो गई। देवी मां के प्रकट होने के बाद उन्होंने देवी जी की खूब स्तुति की। अब स्तुति तो की, देवी जी प्रसन्न भी है, कहते तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। कहते ये तो मुझे मारी डालता भूत, तो आप कृपा करो मैं मुक्ति हो जाऊं यहां से। मुक्त की जब इच्छा की ना तो देवी मां ने वहां पर अपनी असमर्थता बता दी, तुम मेरी सेवा करते हो सब सही, जड़ संसार का कोई भी चीज दे मैं तेरे को दे भी देंगे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुक्ति हमारे बस की नहीं है, वो हम नहीं दे सकते तुमको। कहते मैं तो जीवन भर आपका भजन करता, यही सोच के आप मुक्ति नहीं दे सकते। कहते मुक्त देने का अधिकार भगवान ने हमको नहीं दिया है, हम तो खुद ही इस संसार के इस कार्यों को निभा रहे हैं, हम कैसे मुक्त होंगे। तब पिपाजी महाराज के मन में आश्चर्य हुआ, ये मुक्ति ही नहीं दे सकते, मैं तो दिन भर इनकी सेवा पूजा करता रहता हूं। कई कई महान ऐसे वैष्णव के जीवन में कथाएं आती है, एक हरिराम व्यास जी थे जिन्होंने देवी देवताओं को भी, उनके संगति में एक देवी आई थी ना, उसको भी उन्होंने दीक्षा देके उसका भी उद्धार कर दिया था। वैष्णव लोग तो भगवान के बड़े प्रिय होते हैं ना, वो तो देवी देवताओं को भी दीक्षित कर सकते हैं और उनकी भी मुक्ति करा सकते हैं, भले देवी देवता उनकी ना कराए लेकिन वैष्णव उनकी भी मुक्ति करा सकते हैं, ऐसी वैष्णव की कृपा होती है। लेकिन ये तो जो भक्ति मार्ग में लगा है बस वही व्यक्ति समझेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता इस बातों को। तब उन्होंने कहा कि मां अगर आप मुक्ति नहीं करा सकते तो कुछ उपचार बताइए। तो देवी मां उपचार बताती है, लेकिन बीच में एक प्रसंग आता है, एक यजमान और एक कथाकार का। यजमान ने सुना था कि परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष मिल गया और धुंधुकारी को भी 7 दिन में मोक्ष मिल गया। उसने एक पंडित जी बुलाए, कहते पंडित जी मेरे को 7 दिन भागवत सुननी है, लेकिन कंडीशन है कि मेरे को मोक्ष मिल जाना चाहिए, हो जाएगा? पंडित जी कहते हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, ये कराओ ये कराओ ये कराओ। अब उसको तो लगा मोक्ष ही मिलने वाला है, हर जगह क्या करा देते सब। यजमान धनी था, उन्होंने सब करा भी दिया। 1 दिन की कथा प्रसंग हुआ, 2 दिन का कथा प्रसंग हुआ, वो यजमान के हृदय में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा। 7वें दिन का कथा प्रसंग जब पूर्ण हुआ तो यजमान कहता है पंडित जी मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी तो चेतना और सब ऐसा का ऐसा ही लग रहा है। आप तो कह रहे थे ना कि मोक्ष करा देंगे, अब पंडित जी भी इस समस्या में पड़ गए, क्या जवाब दिया जाए। अब उन्होंने पास में ही उनके नगर के बाहर एक साधु थे, उनके पास जाके पूछा कुछ समाधान बता सकते हो इसका। कहते कल पंडित जी को लेकर आना, दोनों को इकट्ठा समाधान बताएंगे। उसने कहा चलो पंडित जी आप भी, मुक्ति का समाधान मिलने वाला है। पंडित जी के चल पड़ते, चलो हमारी भी कौन सी हुई है। पंडित जी भी आ गए। अब वो साधु ने क्या किया, दोनों को अलग अलग वृक्ष पे रख के रस्सियों से बांध दिया कसके, और साधु खड़ा हो गया सामने। वो यजमान पूछ रहे आप कर क्या रहे हो? बस अभी पता चल जाएगा। बांधने के बाद अभी यजमान क्या कहते, पंडित जी को कहते साधु, पंडित जी इनको जरा मुक्त कर दीजिए। पंडित जी कहते मेरे को तो पहले मुक्त करो, तो उसको मुक्त करूं ना मैं। अब सारी बात यजमान के समझ में आ गई कि भाई हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तात्पर्य कहने का यह है कि सुखदेव गोस्वामी और गोकर्ण जैसे महाराज, काकभूषण जी जैसे महाराज, ये लोग तो मुक्त पुरुष है, इसलिए अपने संपर्क में आने वाले पतित जीवों का उद्धार कर देते हैं। लेकिन देवी मां कहती है जब मैं ही मुक्त नहीं, मैं भी समय के प्रभाव में शरीर का परिवर्तन झेलती हूं, मैं तुमको कैसे मुक्त कर दूं? तब पिपाजी महाराज जी की अंतरात्मा की आंखें खुली। कभी कभी अंधा विश्वास होता है ना कहीं, फिर जब झटका लगता है तो आंखें खुलती है। आंखें खुली, कहते कोई उपचार तो बताओ। कहते उपचार एक ही है, भगवान की शरण में जाना, क्योंकि मुक्ति के दाता मात्र मुकुंद ही है, मुकुंद को छोड़कर मुक्ति कोई देता ही नहीं कभी। अब देवी माने उनको भगवान के पास मुक्ति के लिए इशारा कर दिया, लेकिन कहते कि प्रभु मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को प्राप्त कैसे करें? प्रभु मुक्ति तो देते हैं, हाँ, गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम, मुक्ति तो देते हैं, लेकिन वो प्रभु कहाँ मिलेंगे, उन प्राप्त कैसे करेंगे, वो तो कुछ बताओ। तो देवी माँ ने कहा, अभी काशी में ना रामानंदाचार्य जी बैठते हैं, बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जाके याचना करो, तो हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर दया कर दे। कहते ठीक है। अब पिपाजी महाराज जी के मन में आया कि अब मुक्ति तो अभी करनी ही करनी है, उसके लिए जो बन पड़े वो करेंगे। अब पिपाजी महाराज ने अनेक साज सामान, घोड़े, हाथी, पालकी, सब ताम झाम लेके राजस्थान गांगरोनगढ़ से काशी जाने के लिए रवाना हुए। काशी में पहुंचे जब, तो आचार्य जी के पास सूचना भिजवाई, राजस्थान से पिपाजी महाराज आए हैं, स्वामी जी का दर्शन करना चाहते हैं। सेवकों ने कहा स्वामी जी अभी नहीं मिलेंगे, जब उनका अवकाश होगा तब मिलेंगे। उन्होंने फिर सूचना भिजवाई, स्वामी जी से पूछकर बताइए स्वामी जी कब मिलेंगे। स्वामी जी को जब समाचार मिला तो स्वामी जी कहते हमको राजाओं से मिलकर कोई काम नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं उनसे, हमको मिलने में कोई रुचि नहीं है, उसको बोलो चला जाए यहां से, हम क्या करेंगे उसको मिलकर। आके सूचना समाचार दे दिया कि स्वामी जी की कोई रुचि नहीं है राजाओं को मिलने में ऐसे। अब इसको थोड़ा सा ज्ञान तो हो गया कि स्वामी जी राजाओं को भोगी मानते हैं, राजसी मानते हैं, इसलिए नहीं मिलना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, वहां काशी के जो राजा थे ना, उनको हाथी, घोड़े और बाकी साजो सामान उनको वो दे दिया, आप रख लो। फिर जो धन था, जो द्रव्य था, वो सब वहीं पर गरीबों में बांट दिया, और बाकी जितने भी सैनिक साथ में चले थे उन सबको हाथ जोड़ के बोला अपने अपने गांव चले जाओ। अब अकेले रह गए, पूरे निहत्ते, सब खाली हो गया। एक झटके में निर्णय ले लिया उन्होंने वहीं पर ही, सामान्य व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, एक झटके में निर्णय नहीं ले सकता, आसक्ति होती है। लेकिन पिपाजी महाराज जी की मोक्ष प्राप्त करने की वृत्ति इतनी तीव्र थी ना, किसी भी मूल्य पर यह चाहिए, सब छोड़ दिया उधर ही, टाइम नहीं लगाया। फिर समाचार भिजवाया कि पतित निप्रति पिपाजी आए हैं, जो पतितों में भी जो सबका सरदार होता है ना, उतना अधम पतित वो पिपाजी आए हैं स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, क्या स्वामी जी कृपा करेंगे। स्वामी जी ने कहा आए तो हम क्या करें, जाके कुएं में पड़े। उनको लगा गुरुजी ने आज्ञा दी, वो भागे सीधे कुएं की तरफ। देखो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, अधिकारी थे, कुएं की तरफ भागे। वहीं कुएं पर ही स्वामी जी के शिष्य थे, उन्होंने झट पकड़ लिया उनको, क्या आप ये क्या करने जा रहे। तो पिपाजी महाराज ने कहा कि मुझे तो कैसे भी करके स्वामी जी का दर्शन चाहिए बस। अभी क्या हुआ, गुरु जी की आज्ञा हुई है कुएं में गिर जाओ, अब मैं कुएं में गिरूंगा ही गिरूंगा। शिष्य बार बार रोक रहे लेकिन ये जिद करके कुएं में जाने की हट लगाए हुए, नहीं मेरे को कुएं में गिरना ही है, आज्ञा का पालन करना जरूरी है। तब स्वामी जी ने खुद उनको बुलाया, कुएं में मत गिरो, इधर आ जाओ वापिस, इधर बुलाया। गए स्वामी जी के पास और स्वामी जी ने उनको फिर दीक्षा दी, विधिवत राम मंत्र की दीक्षा दी, उनको वैष्णव बना दिया। तो इस तरीके से जब हम अपना बाहरी अभिमान त्याग करके वैष्णव के निकट में जाते तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। एक कृष्णगढ़ के नागरी दास जी थे, देव संयोग से ऐसे अकारण कुछ साधुओं के संपर्क में आ गए और मन में थोड़ी सी इच्छा जाग गई, जीवन नाशवान है, ये राज्य वैभव भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, तो अभी चलते फिर भजन करने के लिए। कहते कहां चलेंगे, कहते वृंदावन में चलेंगे। वृंदावन में आ गए, देह अभिमान और गेह अभिमान, अभी गेह अभिमान तो छोड़ दिया उन्होंने, संपत्ति छोड़ दी, सब रानियों को छोड़ दिया, उनकी ज्यादा रानियां नहीं थी, 1,00,000 रानियां थी, सब छोड़ दिया। वैसे 1,00,000 कई बार जल्दी छूट जाती, 1 नहीं छूट सकती, वो खड़ी हो जाती है ना, बहुत सारी बीच के बीच में चल जाता है। अभी क्या हुआ, छोड़ के हाथों गए। अभी जहां जाए ना, किसी संत से मिलने जाए, कोई परिचय पूछे तो क्या बताए, कृष्णगढ़ के नागौरी दास राजा, तो जो भी जाए जहां भी जाए संत दरवाजा बंद कर दे, किसी से मिलने जाए कोई बात ही ना करे, उनको धुतकार दे। इन्होंने बड़े दिन लगाए, बाद में विचार करें ये कोई बात ही नहीं करता हमसे, हम सब छोड़ के यहां आए साधुओं से मिलने, मिल रहे कोई बात ही नहीं करता, ये क्या हो गया। तब इनको समझ में आया हम अपनी पहचान ठीक नहीं बता रहे, जिस गेह अभिमान को वही छोड़ दिया था वो तो अभी यहां लेके आए, धर्म पत्नियां छोड़ी, राज्य छोड़ा, सब छोड़ दिया, नौकर चाकर सब छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया है वहां पर, लेकिन राजा है हम, वो तो यहां लेके आए। उन्होंने सोचा हम पहचान ठीक नहीं बता रहे ना, इसलिए साधु मिलते नहीं हमसे, क्योंकि राधा राधा रटने वाले अकिंचन वैष्णवों को राजा से क्या लेना देना, इसलिए महात्मा लोग मिलते नहीं। उन्होंने क्या किया, एक ही लंगोटी पहनी, पूरा वैराग्य वेश धारण कर लिया और संतों पूरा ब्रज के रज में लोटपोट हो गए और फिर किसी संत के पास जाके प्रणाम करे, दरवाजा खटखटाए, संत पूछे कौन हो, कहते भिखारी हो, कुछ कृपा करो, कुछ उपदेश दो, बड़ा पतित घिरा हुआ व्यक्ति हो। संत पास में बिठाए, दयावश उनको कुछ उपदेश कर दे, फिर बाद में कोई कहेगे तो वो राजा थे, तब संतों को और मान हो कि वहां से यहां तक आए, बहुत अच्छी बात है। तो पहले कोई बात नहीं करता था, अभी संत लोग उनके ऊपर दया करते हैं। इसी प्रकार कहते ना कि त्याग करने के लिए भी कुछ गुण चाहिए। कई बार लगता है ना किया क्या, कहते त्याग किया, त्याग करना ये बहुत भारी काम होता है, उसके लिए भी गुण चाहिए होते हैं, ये भी कोई आसान कार्य नहीं है। बिब्बाजी महाराज जी के दोनों अभिमान रामानंद आचार्य ने वही उतार दिए, पहला तो हम राजाओं को मिलके मिलते नहीं करके जितना शरीर से संबंधित जो देह के साथ संबंधित जो गेह होता है सब निकाल दिया, अकेले कर दिए वहीं पर। और फिर बाद में उनको कुएं में जाकर गिरो बोल के अपना शरीर का अभिमान भी, हम तुच्छ है पूर्ण रूप से, वो भी निकालवा दिया। इसलिए कहते हैं कि जो सदगुरु होते हैं ना, वो तो व्यक्ति के हृदय में कोनों कोनों में जाकर उसका सुधार करते हैं, उसको ढूंढते हैं। और ऐसे गुरु जीव को बड़े भाग्य से मिलते हैं जो कदम कदम पे शिष्य का सुधार करे। हालांकि अच्छा नहीं लगता, कभी अहंकार बीच में आ जाता है, लेकिन ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो कदम कदम पे हमको शिक्षा दे, सुधार करे, कि ताकि हम वो दोष लेके आगे भगवान की तरफ ना बढ़ पाए। तो इस प्रकार रामानंद आचार्य के ऊपर बड़ी कृपा की, रामानंद आचार्य ने बड़ी कृपा की पिपाजी महाराज जी के ऊपर। अब आशीर्वाद आदि दे दिया, बोला भी राजधानी की तरफ जाओ, गागरोनगढ़ जाओ। कहते महाराज यहाँ आए, इतना सुख है, अब जाना किस लिए है? अब राजधानी रही ही नहीं, हमने तो सब भूल गए, अभी अब भिखारी हो गए, अब किस लिए जाना? तुम्हारी जो थी वो तो तुमने त्याग दी, अब वो हो गई भगवान राम जी की। अब राम जी की राजधानी है तो राम जी का जो राज्य है उसकी सेवा करने के लिए जाना है तुमको। कहते गुरुदेव मेरे को उसमें मत डालिए, मेरा मन नहीं है अभी। कहते सेवा करने में मन नहीं होता, अगर आवश्यकता पड़े तो राज्य चलाना भी एक सेवा है, वो भी करनी चाहिए। और तुम क्या करो, तुम जाओ, चिंता मत करो, अपने राज्य में अभी खूब साधुओं की सेवा करना। जो भी साधु तुम्हारे राज्य में आए उसकी तुम खुद सेवा करना, और जाते समय वो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, इसका ध्यान भी रखना। और ऐसी सेवा तुम एक वर्ष तक करते रहोगे तो बाद में मैं स्वयं तुमको वहां पर मिलने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, जाओ। जब गुरुजी ने आश्वासन दिया तब पीपा जी महाराज वापिस आए। वापिस आने के बाद अभी राज्य कैसे चलाते हैं, जैसे भगवान राम जी राजा हो और वो उनके एक सेवक हो, ऐसे राज्य चलाते हैं। और जितने भी साधु संत आते उनकी सेवा खुद करते थे, बड़ा ध्यान दे देकर। पहले साधुओं के प्रति उनकी इतनी रुचि नहीं थी, देवी की उपासना करते थे उस समय। अब साधु उनके प्राण जैसे बन गए, गुरु की आज्ञा भी हुई है तो खूब अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। सेवा करते 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 एक वर्ष व्यतीत हो गया, उनको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि वो आएंगे। उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखा, गुरुजी आपने वचन दिया था आप दर्शन देने आएंगे, एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, आप कृपा करिए, आइए मेरा उद्धार कीजिए। जब पीपा जी महाराज जी का पत्र मिला तो रामानंद आचार्य जी अपने 40 शिष्यों को लेकर काशी से राजस्थान की ओर निकल पड़े। और उन जब पीपा जी महाराज को समाचार मिला कि गुरु जी उनके नगर के द्वार पर आ चुके हैं, पीपा जी महाराज भागे, पालकी लेकर भागे, गुरु जी को पालकी में बिठाए, सभी वैष्णव को एक 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 सबको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, सबके चरण प्रक्षालन किए, खूब आक्ता स्वक्ता करके ले आए महल में। और महल में ले आके सबको अलग अलग अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, उत्तम से उत्तम भोजन कराया उन सभी को, और खुद वैष्णव के चरणों की सेवा कर रहे बैठ जाते थे, इतना भाव था पिपाजी में। जब ये भाव जब रामानंद आचार्य जी ने देख लिया तब रामानंद आचार्य को लगा कि अभी इसका वैराग्य का समय भी आ गया है। तो उन्होंने पिपाजी को कहा, अगर तुम अभी राज्य का त्याग करके वैराग्य लेना चाहते हो तो भी ठीक है, और अगर इसी तरीके से राज्य में रह के अगर कार्य करोगे तो भी ठीक है, तुम्हारे लिए दोनों ठीक है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में प्रवेश कर गए हो, अभी तुमको राज्य में रहो तो या त्याग करो तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा राज्य में रह के भी कोई बंधन नहीं होगा। ऐसा जब गुरुजी ने कह दिया ना तो उनके मन में इच्छा हो गई, गुरुजी ने परमिशन दे दिया। अब पिपाजी के मन में बड़ी इच्छा हुई कि गुरुजी बोले हैं तो भी वैराग्य ले ही लेते हैं। गुरुजी को उन्होंने प्रणाम करके कहा, गुरुजी अभी मैं आपके साथ ही भ्रमण करना चाहता हूं वैराग्य लेकर, मुझे अभी यहां पर कोई इच्छा नहीं रहने की। अब पिपाजी महाराज वैराग्य लेने वाले हैं, ये बात पूरे राज्य में प्रसारित हो गई कि भी पिपाजी वैराग्य लेंगे। शुरुआत में तो उनकी जो रानियां थी उन्होंने कहा हम भी वैराग्य लेंगे आपके साथ अगर आप लेंगे तो। पिपाजी महाराज की 20 रानियां थी। अब पिपाजी सोचते थे हम अकेले रहेंगे, ये सब कहां रहेंगे हमारे साथ। तो रानियों ने कहा नहीं हम भी वैराग्य लेंगे अगर आप लेंगे तो, आप चले जाएंगे तो हम यहां किसके लिए रहे। पिपाजी महाराज धर्म संकट में पड़ गए बड़े, क्या करें, हम तो अकेले जाना चाहते थे, ये तो सब साथ में ही आ रहे, अब साधुओं के साथ ऐसे 20 रानियां लेके जाऊंगा और फिर अगर किसी को कहें वैराग्य के लिए, कौन सा वैराग्य है, 20-20 रानियां साथ चल रही है, ये तो अच्छा नहीं है। बड़ा मन में क्लेश हुआ उनके। ये देव संयोग से भगवान ने प्रेरणा दी उनको, उन्होंने रानियों को कहा अगर आप सब लोग वैराग्य लेना चाहते हैं ना तो सब गहने उतार दो, ये सब राशि ठाठबाट उतार दो, भिख मांग के खाना है लंगोटी पहन लो, गले में अफली लगा लो, जो जो वैराग्य लेना चाहता चलो सब। 19 रानियां तो पीछे भाग गई तुरंत ही। कहते प्रेम के जीप की जो पोलम पट्टी है ना वो परीक्षा पर ही खुलती है कि प्रेम कैसा होता है। उन्होंने सोचा हम राजसी घराने से आए, यहां पर राजसी घराने में रह रहे, हम यहां ऐसे कैसे रहेंगे, हम नहीं जी सकते। उन्होंने कहा हम तो जहां वहीं ठीक है, लेकिन उनको डर इस बात का था कि पिपाजी चले जाएंगे, वो जब थे तो हम रानी थे, जब वो चले जाएंगे तो फिर हमको रानी कौन मानेगा, और राज्य में भी अगर ठीक तरीके से हमारी सेवा हुई ना हुई, लोगों ने हमारा तिरस्कार कर दिया तो बड़ा भय हो गया उनको। तो रानियों ने क्या किया, एक 90-95 वर्ष के ब्राह्मण को बुलाया जो बड़ा लोभी था, और सारे रानियों ने उसको 1,000 मुद्राएं दी, आपने क्या करना है ब्राह्मण की हट करके कैसे भी करके पिपाजी को रोक लेना है, वचन देके दुहाई देके आपका जो मन बने करके रोक लो। ब्राह्मण आया कहते महाराज हम आपको जाने नहीं दे सकते, आपकी छत्र छाया में तो हम सब लोग जीते थे, आप तो ब्राह्मणों की इतनी रक्षा करते हो, आप चले जाओगे तो हम नहीं जी सकते। पिपाजी कहते सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो, ब्राह्मणों को सब दान दक्षिणा मिलता रहेगा, आप निश्चिंत रहो। उसको लगा ये तो अभी भी जा ही रहे, हट कर रहे। कहते अगर महाराज हमारा आपसे बड़ा प्रेम है, अगर आप चले गए तो मैं अभी विष खा के यहां प्राण दे दूंगा, आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन और जहर लेके आया साथ में। अब पिपाजी महाराज धर्म संकट में पड़ गए, एक ब्राह्मण हत्या का दोष मेरे पर लग जाएगा। रामानंदाचार्य सारी घटना देख रहे लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। अभी क्या हुआ, पिपाजी महाराज जी के मन में प्रेरणा हुई कि अच्छा भला ब्राह्मण है, कोई भगवान के भजन की ओर जा रहा है तो ये तो रोकता है, रोकना थोड़ी चाहिए। पिपाजी महाराज ने कहा भाई देख तेरी इच्छा जहर पीना हो तो, लेकिन हमको तो जाना ही जाना है। अब ये धर्म संकट में पड़ गया, आप क्या करें, रानियों ने पैसे देके रखा हुआ है और पैसे के लोभ में जहर पी गया, फिर बाद में पैसे किस काम के, लेकिन फिर भी व्यक्ति मर जाता है पैसे के लिए, मरने के बाद तो वैसे भी कोई काम का नहीं, वो जहर पी गया वहां मर भी गया, मर गया तो सब लोगों ने टाने मारे कि महाराज आप क्या करते हैं, ऐसा वैराग्य होता है, ऐसी भक्ति होती है, एक ब्राह्मण का वधी कर दिया आपने तो। ब्राह्मण बिचारा आपको इतनी विनती करता रहा, माने ही नहीं। पिपाजी महाराज जी को बड़ा दुख लगा कि अच्छा नहीं हुआ। अब रामानंदाचार्य जी आए नजदीक और ब्राह्मण को एक चाटा लगा दिया, खड़ा है नाटक करता है, धन के लोभ में मृत्यु कर लेता है, शर्म नहीं आती तेरे को, ब्राह्मणों के ऐसा कार्य करता है, खड़ा। उसको खड़ा किया, उसको जीवित किया, फटकार लगा के उसको वापिस भेजा। तब पिपाजी को समझ में आ गया ये तो सारा चाल किया था इन लोगों ने। अब उनका और तीव्र वैराग्य हो गया, अब तो कोई जिए के मरे, हम तो जाएंगे जाएंगे। अब 19 रानियां पीछे हट गई थी, एक रानी रह गई थी सीता सहचरी, वो कहती थी हम आपके साथ चलेंगे। पिपाजी कहते थे हम कहीं घूमने थोड़ी जा रहे, जंगल में जा रहे हैं, वैराग्य जीवन जी रहे, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना कोई जीवन का ठिकाना, कष्टी कष्ट है, आप कहां चलोगे कष्टी कष्ट में, यही रहो। जैसे राम जी ने सीता जी को समझाया था ना, वैसे उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, पिपाजी महाराज ने भी। लेकिन राम जी के समझाने के बाद दो कदम आगे जानकी जी ने राम जी को समझा दिया था ना, और राम जी कुछ नहीं बोल सके, उनको ले जाना पड़ा। पिपाजी महाराज ने बहुत कुछ बोला इनको, आप नहीं चलो, आप रुको यहीं पर ही। कहते प्रभु मैं सारे कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन आप मुझे साथ ले चलो, आपके बगैर मैं नहीं जी सकती। अब पिपाजी का रत्ती भर मन नहीं था उनको लेके जाने का, लेकिन जब उसने बार बार आग्रह किया तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि इनको साथ ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। पिपाजी कहते प्रभु सब वैराग्यों के बीच में मैं स्त्री लेके चलूंगा, अच्छा लगता है, मेरा मन भी नहीं है। अब वैराग्य किस काम का जब साथ में लेके चले तो, इसलिए अपना जीवन जिए, मैं अपना जीवन जीता हूं, मैं अपना भजन करूंगा। रामानंदाचार्य जी ने उनका भाव देखकर कहा कि तुमको बाधा नहीं उत्पन्न करेगी, ये मदद करेगी। पिपाजी महाराज मनु जी के अवतार थे, और जो सीता सहचरी जो उनके साथ में चल पड़ी थी ना, जिद कर रही थी चलने की, वो शत्रुपा जी की अवतार थे, इसलिए साथ चल पड़ी थी। बाकी रानियां सटक गई, लेकिन ये चल पड़ी साथ में। तो पीपा जी ने कहा अच्छा साथ चलना है ना, सारा ऐश्वर्य निकाल दो, एक लंगोटी पहनो, ऊपरी वस्त्र पहनो। उसने पहन लिया। पीपा जी महाराज के दो वस्त्र पहन के साधु नहीं बनना, एक ही वस्त्र पहनो, ऊपर वाला वस्त्र भी निकाल दो। सभी के बीच में जब पीपा जी ने उनकी परीक्षा ली ना, तो सीता सहचरी अपना वो वस्त्र भी निकालने लग पड़ी। तब आचार्य जी ने रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, इनकी कोई ऐसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इनका मन अच्छा है, आप इनको ले चलो। तब आचार्य जी के कहने पर पिपाजी महाराज उनको साथ में ले गए। राजस्थान गांगरोनगढ़ से चले साधु संतों के साथ यात्रा करते करते, और भगवान की कृपा से द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए, कुछ दिन वहीं पर ही द्वारिका में रहे, और द्वारिका में रहने के बाद जब आचार्य आगे यात्रा कर रहे थे, तो पीपा जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप आगे यात्रा कीजिए, हमारा मन द्वारका में कुछ दिन और वास करने का है, हम यहीं रुक जाए। आचार्य जी ने उनको अनुमति दे दी, ठीक है, और पीपा जी महाराज अपनी धर्म पत्नी के साथ वहीं पर ही रुक गए। कोई राजा ऐसा हरि भजन भजन मार्ग के लिए निकलता है ना, अनेक जीवों का कल्याण भी करता है। धर्मात्मा राजा राज्य चलाए तो भी कल्याण करता है, और वैराग्य लेके भजन मार्ग में जाए तो भी कल्याण करता है। लेकिन अगर विषय में कोई व्यक्ति पड़ जाए, भले राजसी जीवन में बैठा है ना, तो भी ना उसका कल्याण होगा ना उसके पूर्वजों का कल्याण होगा। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते यमपुरी की तरफ चले गए। नारद मुनि का स्वभाव है सर्वत्र भ्रमण करते हैं, जहां दुखी जीव देखा बस उसकी मदद करनी है। तो वहां पर कुछ पितर लोक में पितर देखे जो बहुत तड़प रहे थे,
उनको पूछा भाई आप लोगों की ऐसी अवस्था क्यों हो रही है, कहते अभी हमारा हमारी परंपरा में क्वास नाम का जो राजा आया है ना वो बड़ा विषयी है और उसके कारण हम सब लोग बहुत कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। नारद जी को लगा पी तो राजा को जाके थोड़ा समाचार देना चाहिए, कुछ शिक्षा देनी चाहिए। नारद जी आए और आके उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पितरों को मिलके आया हूं यमपुरी में और बड़ा कष्ट प्राप्त कर रहे वो, तो तुम ये अधर्म का रास्ता त्यागो और ठीक तरीके से व्यवहार आचरण करो, अच्छे व्यक्ति बन जाओ, भक्त बनो। तब राजा के मन में भी बात लगाई कि तो ठीक नहीं है। अभी उसने क्या किया, सादा जीवन जीना शुरू कर दिया, जैसे एक वैराग्य व्यक्ति जीता है ना ऐसा जीवन जीना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे सूचना समाचार फैलने लगा कि राजा कवास जो है अभी वो तो वैराग्य लेते जा रहे, अभी उनका मन नहीं है। तो उनके राज्य में कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा अभी राजा भक्त बनेगा तो वैष्णवों का संग करेगा, कर्मकांड के कोई काम नहीं करेगा तो हम लोगों की जीविका कैसे चलेगी फिर, इसलिए कैसे भी करके राजा को रोकना तो होगा। तो ब्राह्मण गए रानियों के पास और उनको कहा आप राजा को रोको, नहीं तो आप लोगों के की भी कोई गति नहीं होगी, आप लोगों के भी सब उपेक्षा कर देंगे, ब्राह्मणों की भी अच्छी सेवा नहीं होगी। तब रानियों ने क्या किया, राजा के सामने आके जिद की, आप जाएंगे तो हम फिर मर जाएंगे, और ऐसी बड़ी इमोशनली जिद की। तब क्या हुआ, जो कवास था ना वो उनकी बात मान गया और जैसा जीता था वैसे जीना शुरू कर दिया उसने। तो फिर नारद मुनि ने जब यमपुरी में देखा तो उनके पितर बड़ा कष्ट प्राप्त कर रहे, बीच में सुखी हो गए थे, जब उनका पुत्र भजन मार्ग में चला गया तो सुखी सुखी हो गए, अभी देखा तो बहुत दुखी है। कहते अब क्या हो गया आपको, सुखी तो हो गए थे। कहते हमारा बेटा वापिस से अधर्म में लग गया। नारद जी कहते अच्छा भला तो मैं उसको समझा गया था, वापिस अधर्म में लग गया, फिर दोबारा जाता हूं। दोबारा है नारद जी, कहते भाई तुम्हारे पूर्वज तो फिर दुखी हो गए, ये तुम क्या करता है। कहते महाराज मैं क्या करूं, ऊपर वालों को सुखी करता हूं नीचे वाले दुखी हो जाते, इनको सुखी नीचे वालों को करता ऊपर वाले दुखी हो जाते, अब मैंने क्या करने का। नारद मुनि कहते हमको धर्म का पालन करना चाहिए, यही सत्य है, फिर अगर उसमें किसी को दुख लगे तो हमने चिंता नहीं करनी, हमने भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। कहते अगर मैं ये करने जाता हूं तो रानियां कहती हम तो मर जाएंगे, हम तो ये करेंगे वो करें। नारद मुनि कहते कोई नहीं मरता, चिंता मत कर, सब नाटक कर रहे। कहते अब की बार रानियां अगर कुछ बोले ना तो दो चार कोड़े लगा देना कस के एकदम। नारद जी देखो वैष्णव कभी ऐसी सलाह दे ऐसा लगता है हा? लेकिन नारद मुनि ने लगा देना दो चार कोड़े, कोई मरेगा नहीं सब सीधे हो जाएंगे। अब राजा ने वापिस वैराग्य का जीवन अपनाया तो रानी आ गई, महाराज हम आप ऐसा जी रहे हम क्या करेंगे, हम भी फिर वैराग्य ले लेते, हम फिर हम मर जाते हैं, फिर आपको जो करना है करना। राजा कहते बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करते, उठाया कोड़े और लगा दिए दो चार कोड़े, मर जाओगे अभी मरो, और नहीं 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 आपको जो करना है करो। सब अपने अपने रास्ता नाप लिया सबने। राजा कहते अच्छा भला मैं भक्ति मार्ग में जा रहा हूं, बार बार मुझे वापिस ले आते। फिर राजा जब तक जिया ना तब तक राजा वैराग्य अवस्था में ही जिया नारद जी के उपदेश से, फिर उसका संकल्प कभी टूटा नहीं और प्रभु भक्ति करके भगवत धाम की ओर अग्रसर हुआ। तो इसी प्रकार कभी कभी हमारे स्वजन लोग भी हमको भक्ति मार्ग में इमोशनली पीछे खींचते हैं, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, अभी कहां जा रहे हो, अभी कहां जा रही है, नाटक दिखा 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 के कुछ ना कुछ करके भजन में से पीछे खींचते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, व्यक्ति को भगवान के साथ भी तो अपना कोई संबंध होता है, वो भी तो जागाना चाहिए। जिस प्रकार बड़े जिम्मेदारी से यहां के संबंध निभाने में हम तत्पर रहते हैं तो वो भी तो हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ, आत्मा होने के नाते। तो वो भी निभाना चाहिए, उसके लिए भी तो प्रयास करना चाहिए। जब जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो भगवान को ही हमेशा छोड़ देते और शरीर के संबंध को बड़ा महत्व दे देते, इसलिए हम संसार में डूब जाते हैं। लेकिन महान वैष्णव लोग जो होते हैं वो आत्मा धर्म को पहले अपनाते हैं, वो संसार में लोगों के इमोशन और उसको ज्यादा प्रधानता नहीं देते, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति तो खुद ही संसार में डूबा पड़ा हुआ है तो उसके इमोशन का फिर क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए वैष्णव लोग हरि भक्ति को ही प्रधानता देते हैं और यही सत्य है। यहां पर सीता सहचरी तो साथ में चली थी, वो एक ही सच्ची रानी थी उनकी, जिसने हर परिस्थिति में पति की सेवा करने का प्रयास किया। बाकी कैसा होता है माहौल, आप मौज मस्ती में रहो सुख सुविधा में तो हम सेवा करेंगे, बाकी अगर आप अगर थोड़ा सा भी मौज मस्ती सुख सुविधा छोड़ के जाते हो तो आप अपना जाओ, हम तो ये ठीक है। लेकिन सीता सहचरी ने राज्य को महत्व नहीं दिया, अपनी सुविधाओं को महत्व नहीं दिया, उसने पिपाजी महाराज पे महत्व दिया। कहते हमारे पति जहां रहेंगे वहीं रहेंगे, जो अवस्था होगी वही ठीक है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया और यही ठीक है। अब द्वारिका में क्या हुआ, कई दिन वास करने के बाद अब भगवान की द्वारिका नगरी के दर्शन करने की हृदय में बार बार इच्छा जाग रही है, इच्छा हो रही है कि प्रभु की मूल द्वारिका के दर्शन करें। किसी से पूछा कि भगवान के मूल द्वारिका के दर्शन करने हो तो कहां मिलेगी, किसी ने कहा मूल द्वारिका के दर्शन करने तो समुद्र में है, समुद्र में जाओ। अब इन्होंने हृदय पे ले ली बात, धर्म पत्नी को कहा हम समुद्र में जाते मूल द्वारिका का दर्शन करने के लिए। धर्म पत्नी का भी पति के प्रति विश्वास था, कहते ठीक है चलो, समुद्र में जाके कूद गए। अब कुछ लोगों ने देखा तो उनको लगा ये तो मर गए। अब हुआ क्या, ये तो समुद्र में पानी में थोड़े गहरे उतरे, उतने में तो मूल द्वारिका के दर्शन हो गए उनको, मुख्य राज द्वार पर खड़े हो गए, द्वारपाल ने उनको नगर में प्रवेश कराया, ये तो नगर देख रहे, चमचमाता हुआ सोने मोती जवाहरात पन्नों का बना हुआ अद्भुत विशाल द्वारिका नगरी के दर्शन कर रहे, भगवान के पार्षदों के दर्शन कर रहे, भगवान कृष्ण को मिले, 16,108 रानियों को मिले, उनके महल देखे, इतना आनंद आ रहा है अभी तो उसका तो कोई शब्दों वर्णन नहीं हो सकता कि भगवान की द्वारिका नगरी कितनी सुंदर थी। और वहां पर वो जो प्रभु को मिले तो मिलने पर जो उनको आनंद हुआ था, इसका तो वर्णन ऐसे शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन खूब उन्होंने भगवान के साथ भक्ति रस का आनंद लिया। करते करते 7 दिन गुजर गए लेकिन पता नहीं चला। अब भगवान कहते हैं कि पिपा जी अभी वापिस भवमारी द्वारिका में जाओ। कहते नहीं प्रभु, यहीं आने के बाद वहां कौन जाएगा, क्या कर रहे हैं वहां जाके, वहां है ही क्या जो जाएंगे। भगवान कहते नहीं उधर जाओ। कहते प्रभु आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता अभी। अब भगवान के धाम में पहुंच गया हो और फिर भगवान उसको पूछे, बोले तेरे गांव वापिस जाओ, मूर्ख होगा वही वापिस आएगा गांव में। जब भगवान के घर ही पहुंच गए तो फिर संसार में क्या रह जाता है लेने के लिए। अब उनका जाने का मन नहीं तो भगवान ने उनको बड़े मोह जाल में डाल दिया, बड़े यत्न बता दिए कि देखो तुम लोग भक्त थे और विश्वास करके समुन्द्र में कूदे थे, तुमको समुन्द्र में कूदते हुए भी कुछ लोगों ने देखा था। वो लोग क्या सोचेंगे कि प्रभु भक्ति करने में कोई लाभ नहीं है, देखो ऐसे पिपाजी भक्ति करते भक्ति के नाम पे भगवान को प्राप्त करना ऐसा करके समुद्र में कूदे और मर गए, भगवान ने क्या किया उनके लिए, क्या भगवान ने उनकी रक्षा की। तो लोगों का अविश्वास हो जाएगा भक्ति के प्रति, मेरे प्रति। इसलिए आप जब वापिस जाओगे ना तो लोग आपको देखेंगे ना, तो लोगों को समझेगा कि पीपा जी द्वारका पुरी के दर्शन करके आए हैं, भगवान से मिलकर आए हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। और जगत में अनेक जीवों का भी कल्याण भी तो करना है, इसलिए आप जाओ। अब भगवान ने इतना समझा दिया ना कि पीपा जी मना नहीं कर सके, कहते ठीक है प्रभु जो फिर आपकी इच्छा। तो भगवान ने उनके शरीर के ऊपर शंख चक्र की ऐसे छाप कर दी एक प्रमाण के तौर पर कि वो द्वारिका, मूल द्वारिका के दर्शन करके आए हैं, ऐसा छाप कर दिया। और भगवान ने कहा जिसको मिलोगे ना वो छाप इसको भी लगाना। आज भी द्वारिका में ऐसा होता है कि ऐसे छाप लगाते कि आप भगवान के परिकर में आ गए। अभी ब्रज की एक कथा आती है, कृष्णदास एक बाबा जी थे, वो द्वारिका धाम में दर्शन करने के लिए एक बार आए थे। राधा रानी के चरणों की सेवा करते थे लेकिन मन हुआ द्वारिका के दर्शन करने जाते, तो द्वारिका आ गए दर्शन करने के लिए। अब क्या हुआ कि किसी ने छाप लगा दी उनको, ये पुरानी घटना है, 150-200 साल पुरानी, किसी ने छाप लगा दी। अब फिर वो द्वारिका से जब वापिस वृंदावन में आए, अब प्रभु भजन कर रहे हैं ना तो उनको कोई अनुभव नहीं हो रहा है। पहले राधा रानी का दर्शन होता था, ललिता विशाखा जी का दर्शन होता था, कृष्ण का दर्शन होता था, सुंदर लीलाओं का दर्शन होता था, अब कुछ नहीं हो रहा है। बार बार यत्न कर रहे, बार बार यत्न कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तब एक दूसरे जय कृष्ण दास बाबा जी थे, उनको जाकर मिले, कहते बड़ी समस्या हो गई है, हमको पहले दर्शन होते थे अब होते नहीं। कहते तुमसे फिर कोई अपराध हो गया है, क्योंकि भक्ति मार्ग में अनुभव बंद हो गए मतलब कोई अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ? कहते मेरे को तो कुछ पता नहीं क्या अपराध हुआ। जब उन्होंने अनेक अनेक घटनाओं के बारे में जब पूछा, कोई याद करो कुछ बताओ, तब उन्होंने ऐसा विवरण बताया, हम द्वारका गए थे, ऐसी छाप लगाई थी, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया वहीं पर, यही गलती हुई तुम्हारे से भी। अब राधा रानी तुमको छोड़ दिए है। राधा रानी ने सपने में आके कहा कि तुम द्वारका गए थे, द्वारकाधीश की छाप लगवाए हो, तो रुक्मणी के परिकर में आ गए, अब हमने तुमको त्याग दिया है, अब तुम रुक्मणी के परिकर में रहो। अब ये तो रोने धोने लगे, चिल्लाने लगे, मेरे को नहीं रहना, मेरे को आपकी शरण में रहना है। कहते अब नहीं हो सकता। खूब पश्चाताप किया उन्होंने, अनेक साधुओं को जाके पूछे कुछ उपाय बताओ। साधु कहते कृष्ण के तरफ का उपाय होता ना तो लड़के भी बता देते, कृष्ण के पास चल जाती थी, प्रभु ऐसा नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, आप एक घटना के लिए भक्त को छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है, तो थोड़ा लड़के भी काम चला लेते। अब राधा रानी की तरफ कैसे, वहां लड़ेगा कौन, बोलेगा कौन, क्योंकि सारे संत महात्मा लोग तो राधा रानी का आश्रय लेकर भजन करते हैं, कृष्ण का आश्रय लेकर तो भजन नहीं करते, कृष्ण की तो संतुष्टि के लिए भजन करते हैं, लेकिन आश्रय तो राधा रानी का होता है। कहते सब कहते हम कुछ नहीं कर सकते। फिर बड़े वीर अग्नि में जले वो कि राधा रानी ने मुझे त्याग दिया ऐसे। तो द्वारिका में ऐसे छाप लगाते हैं। पीपाजी महाराज जब बाहर आए ना तो कुछ लोग वही समुद्र के पास थे, उन्होंने क्या देखा, पीपाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी समुद्र में से बाहर आए। और बड़ी आश्चर्य की घटना क्या हुई साथ में कि उनके सारे कपड़े सूखे हैं समुद्र में से बाहर आने के बावजूद भी। सब लोग कहते सूखे कपड़े लेकर बाहर आए, भगवान के द्वारकाधीश के दर्शन करके आए, बाहर आए, सभी लोगों ने उनको प्रणाम किए, उनका चेहरा देखा, अद्भुत रूप देखा, सबको समझ में आ गया ये द्वारकाधीश के दर्शन करके आए। फिर भगवान ने जो छाप दी थी वो भी दिखाई, उन्होंने वो लोगों को भी लगाई, लोग भी धन्य हो गए कि भगवान ने हमको भी अपना लिया। अभी क्या हुआ, संपूर्ण द्वारिका में जैसे द्वारकाधीश का नाम है ना वैसे पीपाजी महाराज जी का नाम हो गया। जो भी द्वारकाधीश के दर्शन करने आए ना ऐसा नियम बना लिया था कि पीपा जी के भी दर्शन कर लेने के साथ साथ में, द्वारका अगर जाते हो तो। ऐसे महान संत भगवान के दर्शन करके आए हैं, तो सब लोग सोचते हैं भगवान के दर्शन करके अगर कोई देहधारी जीव आया है वापिस, तो वो भी भगवान जैसा ही महान हो गया तो सब उनके भी दर्शन करने जाते। अब ये तो नित्य क्रम बन गया। तो धर्म पत्नी को साथ लेकर चलने का क्या लाभ हुआ था? कुछ दिन होने के बाद धर्म पत्नी ने कहा, प्रभु अब यहां से कहीं और चले जाना चाहिए, यहां तो अभी भजन में बहुत बाधा है, इतनी ख्याति फैली है ना कि कोई शांति से बैठ के हरि भजन नहीं करने देगा। अभी संत महात्मा लोग भजन की रक्षा बहुत करते हैं, क्योंकि उसी के बल पर ही आगे बढ़ना होता है। और मान प्रतिष्ठा के जो भूखे होते हैं ना, वो अपनी भक्ति का बलिदान करके भी मान प्रतिष्ठा कमाते हैं। लेकिन सच्चे संत महात्मा जो होते हैं वो तो मान प्रतिष्ठा से डर जाते हैं कि कहीं भक्ति में नुकसान ना हो जाए। पीपा जी ने कहा, ठीक है, बात सही है, हमको यहां से निकल जाना चाहिए। किसी को बिना बताए रात्रि को पीपा जी महाराज और सीता सहचरी द्वारका छोड़कर निकल गए आगे। आगे की ओर अभी प्रस्थान करेंगे। यही समझ होनी चाहिए भक्ति मार्ग में। तो सीता सहचरी जी को साथ जो ले गए थे ना, उसका यह प्रताप रहा कि उन्होंने भक्ति में पूरा सहयोग दिया उनको, जैसा वास्तव में सीता माता ने दिया था राम जी को। द्वारिका से थोड़ा आगे निकले तो क्या घटना होती है कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने सीता सहचरी का अपहरण करके लेके चले गए। और ये ना आराम से बैठे बैठे भजन कर रहे, भगवान ने देखा इनकी धर्मपत्नी उठाकर ले गए, ये तो अपना आराम से बैठकर भजन कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। कहते कोई नहीं, अभी अकेले भजन करेंगे जैसी प्रभु की इच्छा। भगवान कहते ये तो कुछ करते ही नहीं। भगवान गए वहां से, सीता सहचरी को छुड़ा कर लाए वापस यहां। सीता सहचरी जब आई तो ये उल्टा उनकी परीक्षा ले रहे। जब आई तो उन्होंने क्या दिखाया, तो बैठकर आराम से भजन कर रहे, तो उल्टा उनकी परीक्षा ले रहे। कहते तुमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम भय करती हो कि कृष्ण तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, ऐसा सोचती हो। अभी सीता सहचरी जी भी तो कुछ कह सकती थी, लेकिन वो पति के मर्यादा में थोड़ा चुप रही, कुछ बोली नहीं। तो बात को घुमाकर पीपा जी महाराज क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ परीक्षा कर रहा था, बचाया तो तुमको कृष्ण ही है ना, मैं तो सिर्फ परीक्षा कर रहा था, तुम्हारा भरोसा इसलिए तो तुमको कृष्ण ने बचाया ना। पीपा जी महाराज बोले, अगर ये मेरे को उल्टा कह देती तो, ये मेरे को ऐसा प्रश्न कर देती तो मैं क्या जवाब देता फिर बाद में। तो पीपा जी महाराज ने क्या किया, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, ऐसा के बात को घुमा के वापिस ले आए। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है, तो ऐसा घुमा लिया बात को उन्होंने, क्योंकि पीपा जी महाराज उनकी परीक्षा कैसे करना चाहते थे कि तुम्हारा अपहरण हो गया, तुम बचाओ बचाओ बोलती हो, रक्षा करने के लिए कहती हो, तुम्हारा भगवान में भरोसा नहीं है, भगवान में भरोसा नहीं है तो फिर क्यों हमारे साथ में चली हो, वापिस चली जाओ, भगवान में भरोसा नहीं है तो। क्योंकि द्रौपदी ने भी पहले सबको बुलाया, अभी कोई नहीं आया, तो आखिर में भगवान को बुलाया, तो सीता सहचरी ने भी भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए। तो वो कहती है कि मेरा भरोसा ना होता तो मैं भगवान को क्यों बुलाती और भगवान क्यों आते, और मेरा भरोसा ना होता तो मैं आपके साथ ही क्यों चल पड़ती फिर, क्यों आपके साथ समुद्र में कूद जाती फिर मैं? तो पिपाजी महाराज घबरा गए, नहीं नहीं बात भरोसे की नहीं थी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। अब वास्तव में तुम लायक हो, हर परिस्थिति में रहने लायक हो हमारे साथ, चलो कहते चल पड़े आगे। आगे कुछ राजकर्मी लोगों ने उनको रोक दिया, महाराज यही रुक जाओ आगे नहीं जाना। कहते क्यों? कहते भाई हमको अमुक गांव में जाना है। कहते लेकिन ये वाला रास्ता नहीं है, चार को साइड से रास्ता जाता है, उधर से जाओ। कहते भाई इतना कहां जाएंगे, यहीं से जाने दे। कहते यहां से नहीं जाना, यहां कोई नहीं जाता। कहते क्यों नहीं जाता भाई, कारण तो बताओ। कहते यहां रास्ते में ना एक शेर रहता है जो व्यक्तियों की गंध पहचानता है और सूंघ सूंघ के मारता है, इसलिए रास्ता राजा के द्वारा बंद करके रखा हुआ, यहां से कोई नहीं जाता। अब पिपाजी महाराज, अब उनके मन में क्या बात आई, भाई हम तो यहीं से जाएंगे। वो कहते हैं आपको मना कर रहे, अरे हम तो यहीं से जाएंगे। अब उसने देखा कि इनसे क्या बहस करना है, ये सुनेंगे नहीं किसी की। साधु लोगों का अपना मौज मस्ती है, ये किसी की मानेंगे नहीं। कहते ठीक है मरो फिर, मेरे को क्या जाता है, जाने दिया। चल पड़े। अब रास्ते में शेर गंध पाकर आ गया, पिपाजी महाराज जी के सामने आके खड़ा हो गया। पिपाजी महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, निकट बुलाया, हाथ फेरा उसके ऊपर, देख शांत हो जा, हिंसा नहीं करनी अभी तूने, समझ में आया? उसके कान में नाम मंत्र दिया, अब तू वैष्णव हो गया है, वैष्णव है ना, मांस भक्षण नहीं करते, समझ में आया तेरे को? अब किसी को डांटना नहीं, किसी को डराना नहीं, किसी को मारना नहीं। अब उस पिपाजी महाराज ने उसको इस तरीके से उसकी बुद्धि को फेर दिया ना कि वो चुप करके बैठ गया वहां पर, और उन्होंने बोला था कि कोई हिंसा नहीं करना। अब शेर हिंसा ना करे तो घास पत्तियां खा के तो थोड़ी रहेगा, हिंसा ना करे तो जिएगा कैसे फिर? तो लीला ऐसी हुई कि गुरुजी ने आज्ञा की है कि भाई कोई हिंसा नहीं करना, तो उन्होंने क्या किया, 7 दिन तक है ना शेर कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, अब हिंसा करने को मना किया था। और 7 दिन के बाद गुरुजी की कृपा से भगवत नाम करते करते शरीर को छोड़ दिया। तो ऐसा संतों की दया से शेर योनि में पड़े हुए व्यक्ति का भी उद्धार हो गया। तो पिपाजी महाराज सिर्फ शेर का उद्धार करने उस रास्ते से गए थे। संतों को तो कहते तीनों काल की समझ होती है, वो जिद करके इसलिए गए थे क्योंकि एक राजा थे, वो राजा अपने महल में रहते थे, थोड़ा दूर एक साधु भजन करते रहते थे, तो कभी कभी पक्षी आके ना साधु को परेशान करते थे, उनके माथे पे बैठ के चौंच मारते थे, बड़ा परेशान किया करते थे, साधु कुछ बोलते नहीं थे। और ये जो राजा था ना उसको बड़ा आनंद आता था, बड़ा हंसता रहता था ये घटना को देख के। तो कई दिन गुजर जाने के बाद भी साधु ने एक दिन राजा को फटकार लगाई, कैसा मूर्ख व्यक्ति है तू, कोई यहां दूसरे को परेशान कर रहा है तेरे को सुख मिल रहा है, यहां मेरे ऊपर हिंसा हो रही है तेरे को सुख मिल रहा है, तू भी हिंसक जीव ही बन जा। और उसी महात्मा ने इनको श्राप देके सिंह बनाया था, और सिंह के शरीर में आ गए, बड़ा कष्ट प्राप्त कर रहे। लेकिन पिपाजी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि एक जीव आत्मा है जो श्राप वश यहां पर सिंह के शरीर में फंसी है, गए उसको वैष्णव बनाया और 7 दिन निराहार उपवास कर लिया उसने, और 7 दिन में शरीर छोड़कर सिंह उस योनि से मुक्त हो गया। तो कहते संत महात्माओं की तो ऐसी दया होती है कि वो तो मनुष्य क्या, वो तो ऐसे पशु के शरीर में पड़े हुए जो जीव होते हैं ना उनका भी उद्धार कर देते हैं, ये तो उनकी दया होती है। अभी थोड़ा आगे बढ़े तो एक शेष जी का मंदिर था, वहां पर बांबू अर्पण लाठिया अर्पण की जाती थी, जैसे बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में बैत अर्पण किया जाता है ना, ऐसे वहां लाठिया अर्पण करते थे। तो पिपाजी ने कहा भाई एक लाठी हमको भी दे दे, उसने दे दी, कहते मूल्य लाओ, कहते भाई मूल्य हमारे पास नहीं है, कहते मूल्य नहीं लाठी लेनी है, उसने वहां लाठी वापिस छीन ली, कहते जाओ जंगल में और बहुत सारे बंबू एक आध काट के चढ़ा देना, मुफ्त में लाठी लेनी है, कहते। उसने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया, तो पीपाजी महाराज वहीं खड़े रहे और उसकी दुकान में जितनी भी लाठियां रखी थी ना, वो फूट फूट के बड़े बड़े बांस बन गए और हरे भरे हो गए और जमीन से चिपक गए सारे के सारे, जंगली खड़ा कर दिया वहां पर उन्होंने। वो तो चिल्लाया, बड़ी माफी मांगी उसने, महाराज ये आपने यहां क्या कर दिया, अब मैं बेचूंगा कैसे, मेरा तो धंधा बर्बाद हो गया। बड़ी अनुनय विनय की उसने, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको ऐसा जंगल का रास्ता दिखा रहा था। तो पीपाजी महाराज ने कहा एक शर्त पे तुमको माफ कर सकता हूं, कहते आप जो बोलोगे सब मंजूर है मुझे, बस मेरे को मेरा धंधा वापस करा दीजिए। कहते जितने भी साधु संत तेरे पास आए और चढ़ाने के लिए लाठी मांगे ना, किसी एक से भी पैसा नहीं मांगना तूने, बाकी लोगों से लेना है तो ले ले, साधु संतों से पैसा नहीं लेना तूने। कहते ठीक है, जो भी आएंगे सबको फ्री में दे दूंगा साधुओं को। उन्होंने वापिस हरे भरे जो बांस बनाए थे ना, उसको वापिस सूखी लाठियों में परिवर्तित करा दिया। तो ऐसा पीपाजी महाराज ने उसका ज्ञान खोला कि भाई तू क्या करता है, जीवन पर इसी धंधे में लगा हुआ है, साधुओं की तरफ भी ध्यान नहीं देता तू, कोई आया है तो उसकी कुछ थोड़ी मदद भी कर दे, सेवा भी कर दे, ऐसा भी नहीं सोचता। तो उसकी अंतरात्मा भी जाग गई कि आगे से मुझे भी इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, ऐसा उसके हृदय में भी अंतरात्मा जाग गई। आगे पीपाजी महाराज ने सुना था कि एक भक्त श्री चिदर जी महाराज है और उनकी धर्म पत्नी है, वो भी बड़ी भक्ति परायण है। उन्होंने सोचा कि उनको मिलते हुए जाएंगे रास्ते में, और पीपाजी महाराज जब जूना द्वारिका से निकले थे ना, तो उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। तो भक्त चिदर भी याद कर रहे थे, अपनी धर्म पत्नी से चर्चा कर रहे थे, एक महान संत है पीपाजी द्वारिका में, कभी उनके दर्शन करने का मौका मिले तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, हमारा अभी जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन किए उन्होंने, वो और उनकी धर्म पत्नी बड़े महान है। तो श्री चिदर जी अपने घर पे बैठे बैठे ऐसी आशा कर रहे, और वहां रास्ते में पीपा जी ने सुना है कि आगे जूनागढ़ से नजदीक के गांव में एक संत रहते चिदर जी, बड़े वैरागी प्रकृति के संत है और अपने से हर संभव प्रयास करते साधुओं की सेवा करने का। तो इधर उधर जाने के बजाय ऐसे वैष्णव के पास ही जाते, फिर तो उन्होंने मन बना लिया कि श्री चिदर जी के घर जाएंगे। तो अभी पीपा जी का चरित्र लंबा है थोड़ा सा, कल इसको पूरा करेंगे कि चिदर जी महाराज जी की भक्ति कितनी महान है, जो पीपा जी को मिले, और उनको मिलने के बाद पीपा जी की जो धर्म पत्नी है सीता सहचरी, उनके अंदर कैसी दिव्य भावना जागृत हुई साधुओं की सेवा करने की, और किस प्रकार उन्होंने अनेक जीवों का आगे उद्धार किया, ये कथा आगे अभी कल वर्णन करेंगे। आज सभी का धन्यवाद करते हैं। श्री पीपाजी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय।